आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, पूजा का मर्म। हमारे पास पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचार हैं, जो उनकी एक पुस्तक के अध्याय से लिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि जो लोग अध्यात्म को समझना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसी समझ मिले जिससे वो अपने अपने परिवार की और समाज की जिंदगी बेहतर बना सकें।
और सच कहूं तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी पूजा पाठ से जुड़ी सबसे मतलब बुनियादी मान्यताओं को भी चुनौती देती हैं।
बिल्कुल, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वो ये है कि पूजा उपासना का मकसद ईश्वर को खुश करना है ही नहीं। ये पढ़कर तो मैं सच में एक पल के लिए रुक गया। हम सब तो यही मानकर बड़े हुए हैं कि पूजा करो ताकि भगवान प्रसन्न हो। ये विचार तो उस पूरी नींव को हिला देता है।
ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार है और यहीं से सारी बात शुरू होती है। पूज्य गुरुदेव का तर्क बहुत सीधा है।
क्या?
ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का नियंता है, वो हमारी स्तुति या निंदा से प्रभावित कैसे हो सकता है? वो इन मानवीय भावनाओं से परे है, है ना?
सही बात है।
तो फिर सवाल उठता है कि पूजा पाठ के जितने भी तरीके बनाए गए हैं, उनका असली मकसद क्या है? और जवाब है आत्मोन्नति।
आत्मोन्नति,
हाँ, ये पूरा सिस्टम हमारे अपने फायदे के लिए, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया है।
ठीक है, अगर ये हमारे अपने विकास के लिए है, तो फिर अगला सवाल तुरंत दिमाग में आता है, फिर इन विशाल मंदिरों, इन भव्य संस्थाओं की क्या जरूरत पड़ी? ये पूरा ढांचा किसके लिए खड़ा किया गया?
और यहीं पर हमारे पूर्वजों की सामाजिक सूझबूझ का पता चलता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को सिर्फ एक पूजा स्थल की तरह नहीं देखा।
अच्छा।
नहीं, उन्होंने इसे एक सार्वजनिक धर्म संस्था के रूप में स्थापित किया। सोचिए, प्राचीन काल में मंदिर समाज के जीवन का केंद्र हुआ करते थे, जहां सुख शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम होता था।
मतलब एक तरह के कम्युनिटी सेंटर, जहां धर्म के साथ साथ समाज की दूसरी जरूरतें भी पूरी होती थीं।
बिल्कुल, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। कल्पना कीजिए, एक ही संस्था है मंदिर, और उसके अंदर आपको चिकित्सालय भी मिल रहा है।
चिकित्सालय?
हाँ, और ज्ञान के लिए पुस्तकालय भी है, बच्चों के लिए पाठशाला और युवाओं के लिए व्यायामशाला भी है, राहगीरों के लिए प्याऊ है, और वो समाज के मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए कथा कीर्तन का भी इंतजाम है।
ये तो कमाल है। इसका मतलब स्थानीय लोगों की लगभग हर सार्वजनिक जरूरत एक ही जगह पूरी हो रही थी।
और क्योंकि ये सब धर्म और ईश्वर के नाम पर हो रहा था, तो लोग भी पूरे मन से इससे जुड़ते होंगे।
यही तो इसकी खूबी थी। और इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता था? वो व्यवस्था और भी दिलचस्प है।
कहाँ से?
पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आज की तरह घर घर जाके चंदा मांगने की नौबत नहीं आती थी, नगर के लोग खुद ही आगे आते थे।
मतलब घर में विवाह है, पुत्र का जन्म हुआ है, या व्यापार में कोई बड़ा लाभ हुआ है, ऐसे हर खुशी के मौके पर लोग दिल खोलकर मंदिर में दान देते थे। यहाँ तक कि व्रतों और त्योहारों पर भी विशेष दान दिया जाता था।
अच्छा।
इस तरह मंदिरों के पास हमेशा पर्याप्त धन जमा रहता था।
और उस धन को सुरक्षित रखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। उसे मूर्ति के आभूषणों के रूप में रखा जाता था, एक तरह का रिजर्व फंड।
हाँ, जो हमेशा सुरक्षित रहे।
ये पूरी व्यवस्था आत्मनिर्भर और बहुत मजबूत लगती है। पर सवाल यह है कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण संस्थान को चलाता कौन था? क्या कोई भी आकर इसका संचालक या पुजारी बन सकता था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर इस व्यवस्था की गंभीरता दिखती है। इतने पवित्र और वो सार्वजनिक जीवन से जुड़े संस्थान का संचालन किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता था।
तो फिर किसे?
इसके लिए एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को चुना जाता था। ऐसा इंसान जो विद्वान हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जो खुद धर्म के रास्ते पर चलता हो और एक सुयोग्य ब्राह्मण हो, केवल उसे ही मंदिर संस्था का संचालक नियुक्त किया जाता था।
अच्छा।
इन्हें ही हम महंत जी या पुजारी जी कहते थे।
और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती थीं?
क्या उनका काम सिर्फ सुबह शाम आरती करना था?
नहीं नहीं, उनका काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। महंत या पुजारी का पद बहुत गौरव और जिम्मेदारी का था। उन्हें समाज की तरफ से जीविका की चिंता से मुक्त रखा जाता था।
क्यों?
ताकि वो अपना पूरा समय और ऊर्जा समाज के लोगों यानी अपने यजमानों की शारीरिक और मानसिक उन्नति में लगा सकें।
वो एक तरह से पूरे समाज के मेंटर या गाइड होते थे।
इसी से जुड़ी एक बहुत ही गहरी बात पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जो आज के समय में तो मतलब सोचना भी मुश्किल है।
कौन सी?
वो कहते हैं कि पुजारी को अपने यजमान के पाप और पुण्य दोनों में दसवां हिस्सा मिलता था।
हाँ, और ये नियम इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है। ये एक अद्भुत नैतिक अंकुश था।
कैसे?
इसका तर्क ये था कि अगर कोई यजमान अच्छा काम करता है, पुण्य कमाता है, तो उसे सही रास्ते पर लाने में उसके पुरोहित ने मेहनत की है, उसे प्रेरणा दी है, इसलिए उस पुण्य का दसवां हिस्सा पुरोहित को मिलना ही चाहिए।
ये तो समझ आता है, एक तरह का इनाम, लेकिन पाप में हिस्सेदारी?
दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यजमान कोई पाप कर्म करता है तो ये सीधे सीधे पुरोहित की असफलता मानी जाती थी।
अच्छा?
हाँ, ये माना जाता था कि पुरोहित ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, वो अपने यजमान को सही रास्ते पर नहीं रख पाया, और इस डर से कि उसे भी यजमान के पाप का भागीदार बनना पड़ेगा,
वो हमेशा हर हाल में अपने यजमान को सही रास्ते पर रखने की पूरी कोशिश करता था।
बिल्कुल, ये एक जबरदस्त चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम था।
ये आदर्श व्यवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, एक आध्यात्मिक और नैतिक जिम्मेदारी का ढांचा। लेकिन क्या पूज्य गुरुदेव इस पे भी कोई प्रकाश डालते हैं कि ये व्यवस्था समय के साथ कमजोर क्यों पड़ गई? क्योंकि आज का अनुभव तो इससे बहुत अलग है।
पूज्य गुरुदेव सीधे तौर पर इस व्यवस्था के पतन पर तो इस अध्याय में बात नहीं करते, लेकिन उनका पूरा जोर उस मूल भावना को समझने पर है। जब समाज और पुजारी दोनों इस गहरी जिम्मेदारी को भूल गए और केवल कर्मकांड को ही सब कुछ मान लिया, तब ये व्यवस्था खोखली होने लगी।
जब सेवा और मार्गदर्शन का भाव चला गया और सिर्फ लेना देना रह गया, तो जाहिर है इसका मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया।
सही बात है। तो ये बाहरी ढांचा यानी मंदिर और पुजारी की व्यवस्था तो सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति के लिए थी। अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं। वहां जो प्रतीक हैं उनका क्या अर्थ है? जैसे मूर्तियां, हम मूर्तियां क्यों स्थापित करते हैं? यहां भी बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। मंदिर में पूजनीय अवतारी महापुरुषों की मूर्तियां या ईश्वरीय शक्तियों की तस्वीरें क्यों लगाई जाती थीं?
क्यों?
ताकि जब कोई व्यक्ति वहां आए और उन्हें देखे तो उसके मन में श्रद्धा जगे। वो मूर्तियां केवल पत्थर या धातु के टुकड़े नहीं थीं, वे जीवन के ऊंचे आदर्शों के प्रतीक थीं।
जैसे?
जैसे राम की मूर्ति को देखकर कर्तव्य निष्ठा, कृष्ण को देखकर कर्मयोग, हनुमान को देखकर सेवा और भक्ति की प्रेरणा मिलती थी। वे एक तरह के विजुअल रिमाइंडर थे कि हमें कैसा बनना है।
और भोग लगाना, ये एक ऐसी प्रथा है जो हम सबने की है या देखी है। मेरे लिए यह हमेशा से थोड़ी उलझन वाली बात रही है। एक तरफ पूरी श्रद्धा है, पर दूसरी तरफ एक तार्किक सवाल भी उठता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को हमारे भोजन की क्या जरूरत है? पूज्य गुरुदेव के विचारों में इस विरोधाभास को कैसे समझाया गया है?
पूज्य गुरुदेव इसे एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक समाधान बताते हैं। भोग लगाना असल में मंदिर के संचालक यानी महंत और वहां काम करने वाले लोगों के जीवन निर्वाह की एक बहुत ही सम्मानजनक व्यवस्था थी।
अच्छा।
भोजन भोग के रूप में बनता था और ईश्वर को अर्पित किया जाता था।
और इसका मनोविज्ञान क्या था?
इसका मनोविज्ञान अद्भुत है। देखिए, जो यजमान यानी दान देने वाला है, वो ये समझता है कि मैं ईश्वर को भोग लगा रहा हूँ।
इससे उसका अहंकार नहीं बढ़ता?
बिल्कुल, कि मैं किसी का पेट भर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो महंत या पुजारी उसे ग्रहण कर रहे हैं, वे ये समझते हैं कि मैं ईश्वर का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ।
अच्छा।
इससे उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की शर्म या हीनता महसूस नहीं होती।
वाव।
देखिए, एक ही क्रिया से देने वाले का अहंकार और लेने वाले की शर्म दोनों की जड़ कट जाती है। कितनी गहरी और सम्मानजनक व्यवस्था थी।
ये तो वाकई अद्भुत है, मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अच्छा, और मंदिरों में जो घंटा बजता है, कई लोग मजाक में कहते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति को जगाने के लिए होता है।
बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इसकी वजह बहुत व्यावहारिक थी।
क्या?
प्राचीन समय में आज की तरह हर किसी के पास घड़ी तो होती नहीं थी। मंदिरों में धूप घड़ी, जल घड़ी या बालू घड़ी हुआ करती थी, जिससे समय का सटीक पता चलता था।
तो घंटा एक तरह की पब्लिक क्लॉक थी।
ठीक वैसे ही, एक सार्वजनिक अलार्म क्लॉक। घंटा बजाकर लोगों को समय बताया जाता था।
अच्छा।
सुबह उठने का समय हो गया, घंटा बजा। दोपहर में काम बंद करके आराम करने का समय हुआ, घंटा बजा। रात को भोजन करके सोने का समय हुआ, फिर घंटा बजा।
सोचिए, कोई स्नूज बटन नहीं था।
हाँ, घंटा बजा मतलब पूरे समाज को पता चल गया कि अब क्या करना है। इससे पूरे समाज की दिनचर्या में एक लय और अनुशासन रहता था।
तो इसका पत्थर की मूर्ति को जगाने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये सोए हुए समाज को समय की जानकारी देके जगाता था।
बिल्कुल।
तो अगर मंदिर, पुजारी, मूर्ति, भोग, घंटा, ये सब कुछ एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है जो हमारे फायदे के लिए बनी है, तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीर्थ यात्रा, हवन, दान, तप जैसे शुभ कर्मों का क्या? जब हम कहते हैं कि ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है?
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन सब का भी ईश्वर से कोई सीधा व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ये सब भी हमारे अपने लाभ की ही बातें हैं।
मतलब ये भी हमारे लिए ही है?
हाँ, इन्हें हमारी अपनी उन्नति के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इन कामों से जो हमें सीधा सीधा फायदा होता है, उसी को प्रतीकात्मक भाषा में ईश्वर की प्रसन्नता कह दिया जाता है।
क्या इसका कोई उदाहरण है जिससे ये बात और साफ हो?
हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि 100 योजन पैदल चलने से जांघों के स्नायु मजबूत होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
ठीक है,
आप सोचिए तीर्थ यात्रा में क्या होता है, आप मीलों पैदल चलते हैं, इससे शरीर का व्यायाम होता है, स्वास्थ्य सुधरता है। साथ ही जब आप तीर्थ स्थानों पर पहुंचते हैं तो वहां विद्वानों का सत्संग मिलता है, अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। ये सब प्रत्यक्ष लाभ है जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं।
और इन्हीं लाभों को कह दिया जाता है कि तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने ये फल दिया।
बिल्कुल।
इसी तरह कथा पुराण सुनने से मन को शांति मिलती है, जीवन को एक नई दिशा मिलती है, ये भी एक सीधा लाभ है जिसे ईश्वर की कृपा मान लिया जाता है।
हाँ,
यहाँ आग का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जो इस पूरी बात को साफ कर देता है।
हाँ, ये उदाहरण इस दर्शन का सार है। ईश्वर को आग की तरह समदर्शी और निर्विकार बताया गया है।
समदर्शी और निर्विकार, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि ईश्वर किसी से व्यक्तिगत तौर पर दोस्ती या दुश्मनी नहीं रखता। जैसे आग है, उसके अपने नियम हैं। जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करेगा, जैसे उससे सुरक्षित दूरी बनाएगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा, तो वह आग से खाना पकाएगा, सर्दी में गर्मी लेगा, यानी लाभ उठाएगा।
और जो नियमों को तोड़ेगा, आग को सीधे छूने की कोशिश करेगा, वो जल जाएगा। इसमें आग की कोई गलती नहीं, नहीं आग ने उस पर गुस्सा किया।
बिल्कुल, आग किसी पर व्यक्तिगत रूप से खुश या नाराज नहीं होती, वो तो बस अपने नियमों के हिसाब से परिणाम देती है।
अच्छा,
ठीक उसी तरह ईश्वर के भी नियम हैं, जिन्हें हम धर्म कहते हैं। सत्य, सेवा, परोपकार, प्रेम, जो इन नियमों का पालन करता है वो उनकी कृपा पाता है, यानी सुखी और उन्नत जीवन जीता है।
और जो इन नियमों को तोड़ता है वो उनका प्रकोप पाता है, यानी दुखी और परेशान रहता है।
सही, ईश्वर किसी व्यक्ति पर खुश या नाराज नहीं होता, हम अपने कर्मों से ही उनके नियमों के अनुसार फल पाते हैं।
तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूँ तो ईश्वर की प्रसन्नता का मतलब है ईश्वरीय नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जीना। पर पूजा उपासना वो तरीके हैं जो हमें उस तालमेल को बिठाने में मदद करते हैं।
आपने एकदम सही सार निकाला। पूजा उपासना का असली तात्पर्य है कि हम खुद उन्नति के रास्ते पर कदम बढ़ाएं और दूसरों को भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करें।
मतलब
सारे धार्मिक कर्मकांड, सारे पूजा पद्धतियां इसी एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए उपकरण है, साधन है।
तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पूजा का असली मर्म बाहरी कर्मकांडों में उतना नहीं है जितना आत्म सुधार और समाज सेवा के आंतरिक भाव में छिपा है। ये पूरी व्यवस्था व्यक्ति को अंदर से मजबूत और समाज को बाहर से सुव्यवस्थित बनाने का एक अद्भुत वैज्ञानिक तरीका है।
बिल्कुल, और इन विचारों को जानकर हमें अपने आध्यात्मिक आचार्यों की मनोवैज्ञानिक चतुराई और सूक्ष्म दृष्टि पर गर्व होता है। उन्होंने आत्मोन्नति जैसे इतने गहरे विषय को कितने सरल और प्रभावी प्रतीकों में बांध दिया ताकि हर साधारण व्यक्ति भी उसका लाभ उठा सके।
आज की इस जानकारी के बाद एक विचार जो मन में रह जाता है वो ये है कि अगर मंदिर और पूजा पाठ की ये पूरी व्यवस्था व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए बनाए गए इतने शक्तिशाली उपकरण हैं, तो आज हम इन उपकरणों का किस तरह उपयोग कर रहे हैं? क्या वे आज भी अपने उस मूल उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं?